कबीरा खड़ा बाजार में। चार, कबीर पर की जाने वाली हमारी वर्तमान चर्चा के केंद्र में कबीर अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ हमारी चिंता से मुखातिब होते हैं। जिस सांस्कृतिक चेतना को हम उनकी रचनाओं में मूर्त होते हुए देखते हैं, वह संस्कृत भारतीय संस्कृति की किसी घिसी पिटी धारणा का तिरस्कार करती है और भारतीय संस्कृति की विद्रोही चेतना के रूप में हमें अपनी पहचान कराती है। इस भारतीय संस्कृति की अपनी छवि को लेकर एक मत नहीं है। अतएव इसके पहले कि हम कबीर को भारतीय संस्कृति की विद्रोही चेतना का प्रतिनिधि मानते हुए उनकी सोच और उस सोच से गुजरकर सामने आने वाले उनके कृतित्व पर ध्यान दें, उनके बारे में कोई चर्चा करें, हम इस मूलवर्ती सवाल से प्रारंभ में ही निपट लेना चाहते हैं कि आखिर भारतीय संस्कृति है क्या। जाहिर है कि यह एक ऐसा सवाल है जिससे आंखें न मिला पाने या उसके सही जवाब को न पचा पाने का ही परिणाम है कि आज शताब्दी के जिस बिंदु पर हम खड़े हैं, समस्याओं का एक विराट जाल हमें आबद्ध किए है। हमारा सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन क्षतिग्रस्त हो रहा है तथा एक राष्ट्र के रूप में हमारे अपने अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। सवाल है कि जिसे हम भारतीय संस्कृत कहते हैं, क्या वह कोई जड़ या स्थिर वस्तु है जिसका एक सनातन तथा शाश्वत रूप है, अथवा वह एक गतिशील वास्तविकता है जिसके एक एक चरण का और इन चरणों में होने वाले उस रूपांतरणों का एक लंबा और जीवित इतिहास है। कहना न होगा कि इन सवालों से निपटे बिना और सच्चे दिल तथा सही दिमाग से उनका उत्तर पाए और स्वीकार किए बिना भारत के सांस्कृतिक जीवन में कबीर जैसे घर फूंक तमाशा देखने वाले फक्कड़ संत के आविर्भाव की युगांतकारी घटना को उसके पूरे महत्व तथा अर्थ के साथ नहीं समझा जा सकता। यह तथ्य इतिहास सिद्ध है कि भारत में आए आर्यों से पूर्व भी एक अत्यंत समुन्नत सभ्यता तथा संस्कृत विद्यमान थी, जिसके न केवल तमाम भग्नावशेष हमें प्राप्त होते हैं, पूर्ववर्ती संस्कृत पर जिसके गहरे निशान भी विद्यमान हैं। इस पूर्ववर्ती संस्कृत की ढोह पर ही भारत में वैदिक आर्य संस्कृत विकसित और पुष्ट होती है। अपने को जिससे जोड़ते हुए उसका उत्तराधिकारी कहने में हमें अतिशय गर्व तथा हर्ष का अनुभव होता है। इसके उपरांत वैदिक संस्कृत के समानांतर बौद्ध और जैन अपनी विचार संपदा को लेकर चली आ रही सांस्कृतिक पूंजी में इजाफा करते हैं। उनकी बात जाने भी दें तो हर्षवर्धन के समय तक भारत में बाहर से न जाने कितनी जातियों का आगमन होता है, जिनमें से कुछ विजेता बनकर शासक जातियों के रूप में हम पर शासन भी करती हैं। भारत में बाहर से आने वाली ये तमाम जातियां भारत में ही रहती और बसती हैं और कालांतर में भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की धारा से इतना घुल मिल जाती हैं कि उन्हें अलग से पहचानना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि चले आते हुए सामाजिक सांस्कृतिक प्रवाह ने इन्हें ही आत्मसात किया हो। इन्होंने भी अपने विशिष्ट आचार विचारों का रंग क्रमागत सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रवाह पर छोड़ा और उसे एक नया रूप भी दिया है। अतएव हर्षवर्धन तक भारतीय संस्कृत का जो रूप सामने आया, सवाल उठता है कि उसे कौन सा नाम दिया जाए। क्या उसे विशुद्ध वैदिक आर्य संस्कृत कहा जाए, अथवा बौद्ध या जैन संस्कृत कहकर पुकारा जाए, अथवा यह माना जाए कि वह अनेक प्रकार की आर्य और आर्येतर जातियों तथा वैदिक अवैदिक मतों के समागम तथा सम्मिलित प्रयासों से बनी छनी एक ऐसी संस्कृत है जो किसी जाति धर्म मत या नस्ल विशेष की चीज न रहकर उनकी समष्टि के प्रतिफल के रूप में जानी समझी जा सकती है। इसे हम हिंदू संस्कृत भी नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है, मुसलमानों के आगमन से पहले हिंदू शब्द भारत में रहने वालों के लिए एक सामान्य संज्ञा कभी नहीं रहा। वे कहते हैं, इस्लाम के आने से पहले इस विशाल जनसमूह का एक नाम तक नहीं था, अब उसका नाम हिंदू पड़ा। हिंदू अर्थात भारतीय अर्थात गैर इस्लामी मत। स्पष्ट ही गैर इस्लामी मत में कई तरह के मत थे। कुछ ब्रह्मवादी थे, कुछ कर्मकांडी थे, कुछ शैव थे, कुछ वैष्णव थे, कुछ शाक्त थे, कुछ स्मार्त थे, और भी न जाने क्या क्या थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर, 180-81 पृष्ठ। इस्लामी धर्म मत से टक्कर लेने के हेतु शास्त्रों की छानबीन करते हुए एक ऐसे सर्वसम्मत मत को निकालने का प्रयास किया गया जिसके संरक्षण में गैर इस्लामी मत के भारतीय खड़े हो सके और अपने को सुरक्षित अनुभव कर सकें। गो कि यह प्रयास सर्ववाद सम्मत नहीं रहा, फिर भी एक नए आचार प्रवण धर्म का रूप सामने जरूर आया। अतएव इतिहास की रोशनी में इस तथ्य को मान लेने में हमें हिचक नहीं होनी चाहिए कि हर्षवर्धन के समय तक भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में अनेक प्रकार के लोगों और जातियों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान की एक जीवित क्रिया चलती रही। और यद्यपि भारतीय सांस्कृतिक जीवन के प्रधान धारा से बाहर आती हुई अनेक जातियों, कबीलों, नस्लों और घुमक्कड़ खानाबदोशों के झुंड अपने आचार विचारों के लिए दिए घुल मिल गए, फिर भी उन्होंने चले आते हुए सांस्कृतिक प्रवाह को ज्यों का त्यों नहीं रहने दिया, उसे अपने रंग में रंग से रंग। फलतः भारतीय सांस्कृतिक जीवन की एक ऐसी छवि उभरी जो यहाँ पर रहने वाली किसी एक खास जात की देन न होकर सबके सम्मिलित प्रयासों का परिणाम थी। आचार्य द्विवेदी ने ठीक ही कहा है, जिसे हम हिंदू रीत नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जात की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा की भांत सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है, अशोक के फोर। हर्षवर्धन के उपरांत भारत का इतिहास प्रारंभ में आक्रमणकारी आक्रांताओं और लुटेरों के रूप में मुसलमानों के आक्रमणों का, तदुपरांत उनके विजेताओं के रूप में देश के शासनकर्ता बनने का इतिहास है। बाहरी आक्रमणों का सामना पहले भी देश ने कई बार किया था, किंतु जैसा कि हम कह चुके हैं वे आक्रमणकारी जातियां मूलतः कबीलाई, खानाबदोश या आदिम जातियां थी, जिनका न तो कोई दृढ़ सामाजिक संगठन था और न ही कोई सुव्यवस्थित और संगठित धर्म तथा संस्कृति। अपनी प्रकृति में अत्यंत लचीली तथा पर्याप्त समुन्नत और पुष्ट भारतीय संस्कृति तथा समाज व्यवस्था ने न केवल इन्हें आत्मसात किया बल्कि उनके देवी देवताओं तथा आचार विचारों को भी अपना बना लिया। किंतु इस बार के आक्रमणकारी दूसरी ही धात के बने हुए थे, वे दूसरे ही हवा पानी में पले हुए थे, वे केवल भारत की भौगोलिक विजय अथवा भारत की अपार संपत्ति लूटने के इरादे से ही घर से न निकले थे। उनका लक्ष्य भारत में मुसलमानी मजहब तथा एक ऐसे इस्लामी राज्य की स्थापना करना था जैसा कि और मुस्लिम देशों में था। आबिद हुसैन ने ठीक ही लिखा है, अगर यूनानियों की तरह जो दूसरी सती ईस्वी में बख्तर से आए थे, अपने और अपनी संस्कृति के उद्गम स्थान से बहुत अरसे तक उनका नाता टूटा रहता, अथवा अगर उनकी संस्कृति सीरियन और हूणों की तरह आदिम होती तो वे हिंदू समाज में घुल मिलकर एकात्म हो जाते। लेकिन पहले तो वे एक समुन्नत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति के प्रतिनिधि थे, दूसरे वे भारत से बाहर उस संस्कृति के केंद्रों से, और इनमें इस्लामी जगत का राजनीतिक केंद्र बगदाद भी शामिल था जिसका महत्व आज नाम मात्र का रह गया है, बराबर संपर्क बनाए रहे। इन कारणों से उन्हें पूरी तरह भारतीय होने में काफी समय लगा। आबिद हुसैन, राष्ट्रीय संस्कृत, पृष्ठ 44। और भी कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिन्होंने मुसलमानों और उनके मजहब की पटरी भारतीय धर्म मतों से न बैठने दी। इस्लामी धर्म मत और इस्लामी संस्कृत को आत्मसात करना तो दूर की बात, भारतीय मनुष्यों के समक्ष तात्कालिक सवाल तो इस बात का खड़ा हो गया कि मुसलमानों की उद्दीप्त धर्म भावना, दृढ़तर तथा सुव्यवस्थित सामाजिक संगठन एवं मानव जाति की समानता के उदार इस्लामी आशय से किस प्रकार अपने धर्म मत, अपने आचार विचारों, अपनी समाज व्यवस्था तथा अपने रीति नीति की रक्षा करें। अविजेय और अपरिवर्तनीय समझी जाने वाली भारतीय जाति व्यवस्था को पहली बार जबरदस्त ठोकर लगी थी। भारतीय जनमानस ही नहीं, समूचा भारतीय वातावरण पहली बार पूरी तरह विक्षुब्ध हो उठा था। इस्लाम कृपाण के बल पर भी और समानता के अपने उदार आश्वासन के बल पर भी गुहार गुहार कर उन आचार भ्रष्ट तथा आश्रम भ्रष्ट जातियों को, जो न तो हिंदू थी न मुसलमान, अपने संरक्षण में बुला रहा था। अब तक वर्णाश्रम व्यवस्था का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। आचार भ्रष्ट व्यक्ति समाज से अलग कर दिए जाते थे और वे एक नई जात की रचना कर लेते थे। इस प्रकार सैकड़ों जातियां और उपजातियां भ्रष्ट होते रहने पर भी वर्णाश्रम व्यवस्था एक प्रकार से चलती ही जा रही थी। अब सामने एक प्रतिद्वंदी समाज था जो प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जात को अंगीकार करने के लिए बद्ध परिकर था। उसकी एकमात्र शर्त यह थी कि वह उसके विशेष प्रकार के धर्म मत को स्वीकार कर ले। समाज से दंड पाने वाला बहिष्कृत व्यक्ति अब असहाय नहीं था। इच्छा करते ही वह एक सुसंगठित समाज का सहारा पा सकता था। अजायुषा द्विवेदी, कबीर, 183 पृष्ठ। आचार तथा आश्रम भ्रष्ट जातियों के अतिरिक्त अंत्येष्ट कही जाने वाली जातियां भी थी, जो यद्यप भारतीय आचार तथा आश्रम व्यवस्था का अंग थी, किंतु अंत्येष्ट होने के नाते जिनकी सामाजिक स्थिति तथा मर्यादा हीन से हीनतर तथा विषम से विषमतर होती जा रही थी। इस्लाम द्वारा दिया गया समानता का आश्वासन उन्हें भी अपनी ओर खींच रहा था। जिस समय भारत के राजनीतिक ही नहीं सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षितिज पर भी चुनौतियों के काले स्याह बादल मंडरा रहे थे, सारा देश उद्वेलित था, आगे की राह ढूंढने को व्याकुल था। एक अन्य युगांतकारी घटना घटित हुई जिसने देश के कोट कोट संतप्त जनों को आगे की राह दिखा दी। यह युगांतकारी घटना थी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का उदय। ग्रियर्सन ने लिखा है, बिजली के चमक के समान अचानक इस समस्त अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी, यह भक्ति आंदोलन था। हमारा इरादा यहाँ भक्ति आंदोलन के समूचे इतिहास को प्रस्तुत करना नहीं है। भक्ति के इस आंदोलन के बारे में हम एक अलग अध्याय में काफी कुछ कह चुके हैं। यहाँ हम मात्र इस तथ्य को ही रेखांकित करना चाहते हैं कि एक ऐसे समय में जबकि समूचा उत्तर भारत एक ओर इस्लाम और इस्लामी शासकों के मजहबी आवेश से और दूसरी ओर शास्त्र और वेद सम्मत आचारों की कड़ी जकड़बंदी के फलस्वरूप असहनीय प्रकार की घुटन अनुभव कर रहा था, देश के कोट कोट सामान्य जन इस्लामिक प्रभाव के फलस्वरूप रूढ़ से रूढ़तर होते हुए भारतीय धर्म मतों एवं प्रखर से प्रखरतर होती हुई इस्लाम की उद्दीप्त धर्म भावना से त्रस्त, आतंकित और पीड़ित थे। सच्ची धर्म भावना के ह्रास के फलस्वरूप चमत्कारी साधुओं, सिद्धों और वामाचारियों के द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा था। सामान्य हिंदू और मुसलमान जन एक दूसरे के निकट आने और एक दूसरे को पहचानने को समुत्सुक थे। दक्षिण से आने वाली भक्ति आंदोलन की धारा ने दीर्घ काल से तप्त उनके मन प्राणों को भीतर तक सींच दिया। सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन के अवरुद्ध प्रवाह को भक्ति आंदोलन की वेगवती धारा ने धक्का देकर गतिशील कर दिया। जो समाज टूटने और बिखर जाने के लिए जैसे कगार पर खड़ा था, वह एक नई शक्ति पा गया। उत्तर में आने वाली भक्ति आंदोलन की यह धारा कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। शताब्दियों पहले दक्षिण में सर्वप्रथम आलवारों और आडवारों के चले आते हुए शास्त्र सम्मत विधि विधानों को तोड़ते हुए शिव और विष्णु भक्ति का रास्ता सबके सामने सुलभ किया। बात को रामानुज और उनकी शिष्य परंपरा के रामानंद ने एक कदम और आगे बढ़कर परंपरागत वैष्णव धर्म की व्यवस्था पर चोट करते हुए भगवत भक्ति का अधिकारी न केवल शूद्रों और चांडालों को माना, वरन मुसलमानों को भी अपनी शिष्य परंपरा में स्वीकार करते हुए एक सामान्य मानव धर्म के लिए रास्ता साफ कर दिया। रामानंद इस सहज मानव धर्म को उत्तर भारत तक लाए और उत्तर भारत को ही उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र भी बनाया। कहां तो रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था और कहां रास्ते ही रास्ते खुल पड़े। फिर क्या था? जात पांच पूछे नहीं कोई, हर को भजे सुहरि का होई। शूद्रों, अंत्यजों और मुसलमानों के बीच से रूढ़ियों के सड़े गले जम्बाल जाल को काटते हुए भक्ति के सहज निर्मल प्रवाह में अवगाहन करती हुई और उपेक्षितों, पीड़ितों तथा पद दलितों की जन्म जन्म की आकांक्षा को फलवती करती हुई संतों की अत्यंत अंत्यज शूद्र और मुसलमान संतों की ऐसी पंक्ति की पंक्ति सामने आई, अब तक के सांस्कृतिक जीवन के इतिहास में जिसकी मिसाल नहीं है। यह भक्ति आंदोलन सब पूछा जाए तो अपने समय की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों की अनिवार्य देन था। वह युग जीवन की ऐतिहासिक मांग बनकर सामने आया था। इस तथ्य का अनुमान महज इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने न केवल अपने समय की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जड़ता को तोड़ा, चली आती हुई सांस्कृतिक जीवन की धारा के साथ विजेताओं की नई संस्कृति को घुराते मिलाते हुए पहली बार जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण आदि से निरपेक्ष एक मानव धर्म तथा एक मानव संस्कृति की परिकल्पना सामने रखी। इसने शताब्दियों से कुंठित और अपमानित देश के करोड़ करोड़ साधारण जनों के लिए उनकी सामाजिक मुक्ति तथा आध्यात्मिक परितृप्ति के द्वार भी उन्मुक्त कर दिए। समाज तथा धर्म के ठेकेदारों ने जिन्हें उनके लिए कब का बंद कर रखा था, इस आधार पर यह कहा जाए कि एक स्तर पर यह भक्ति आंदोलन रूढ़िग्रस्त धर्म तथा उसके द्वारा अभिशप्त एक अनैतिक और अमानवीय समाज व्यवस्था के प्रति सम्मान जिनके सात्विक क्रोध तथा उसकी दुर्दम जिजीविषा की भावात्मक अभिव्यक्ति था तो कोई अतिश्रयोक्ति नहीं होगी। निम्न वर्गीय साधारण जन की व्यथा से उद्भूत इस भक्ति आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए गजानन माधव मुक्ति बोध कहते हैं, भक्ति आंदोलन का जन साधारण पर जितना व्यापक प्रभाव हुआ उतना किसी अन्य आंदोलन का नहीं। पहली बार शूद्रों ने अपने संत पैदा किए, अपना साहित्य और अपनी गीत सृजित किए। कबीर, रैदास, नाभा, सिंपी, सेना, अनाई आदि महापुरुषों ने ईश्वर के नाम पर जातिवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद की। समाज के न्यस्त स्वार्थवादी वर्ग के विरुद्ध नया विचारवाद अवश्य भावी था, वह हुआ। तकलीफ हुई लेकिन एक बात हो गई, नई कविता का आत्म संघर्ष तथा नया अन्य निबंध पृष्ठ 88। भक्ति आंदोलन के ज्वार में न केवल उच्च वर्गों का अहंकार, वर्ण दंभ तथा समाज धर्म और निज संबंधी उनकी जर्जर मान्यताएं तिनके के समान ऊब डूब करती दिखाई दी, सामान्य जन को वह आत्मविश्वास भी प्राप्त हुआ जिसके सहारे वह सम्मानपूर्ण जिंदगी बिताते हुए अपने धार्मिक तथा आध्यात्मिक मानस को संतोष दे सके। इतिहास के देशी विदेशी समस्त विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक प्रदेय को युगांतकारी माना। बहुतों ने इसे सांस्कृतिक नव जागरण की संज्ञा दी है और इस नव जागरण के नेता रामानंद को एक क्रांतिद्रष्टा, एक प्रवर्तक व्यक्ति घोषित किया है। रामानंद निस्संदेह उत्तर भारत के सांस्कृतिक नव जागरण के अग्रदूत थे। गौतम बुद्ध के बाद कदाचित ही किसी धार्मिक तथा सांस्कृतिक नेता के को अनुयायियों की इतनी विशाल संख्या के नेतृत्व और मार्गदर्शन का गौरव मिला हो। देश के विखरते तथा विषैले होते हुए सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन को उन्होंने संजीवनी प्रदान की। जाति पाति वर्ग और वर्ण की दीवारें ढहाते हुए उन्होंने भक्ति तथा भक्ति का पथ सबके लिए सुगम कर दिया और इस प्रकार समाज तथा संस्कृति की मृत होती हुई बौद्धिक तथा भावात्मक चेतना को नया जीवन प्रदान किया। सवर्ण, असवर्ण, शूद्र, चांडाल और मुसलमान, उन्होंने सबको गले लगाया और राम नाम का मंत्र देते हुए सबको समान निष्ठा तथा समान लक्ष्य के एक सूत्र में बांध दिया। राम नाम के उनके मंत्र ने सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति के लिए पथ प्रशस्त किया। उनकी शिष्य परंपरा में कबीर भी रहे और तुलसी भी। सगुण और निर्गुण की जिस लहर ने रामानंद में अपना स्रोत प्राप्त किया वह उत्तर भारत में ही नहीं पूर्व और पश्चिम में भी शतधा धाराओं में प्रवाहित हुई। इस सारे तथ्यों के संदर्भ में यदि भक्ति आंदोलन के युगांतकारी महत्व की का आख्यान किया गया है तो यह स्वाभाविक ही है। वह एक ऐसी प्राण शक्ति के रूप में उभरा था जिसने समूचे देश को जैसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। एक नए सांस्कृतिक प्रयाण का जो रास्ता उसने खोला और अधिक स्पष्ट कहें तो वर्ग, वर्ण और धर्मनिरपेक्ष की जिस एक मानव संस्कृति की संभावनाओं की ओर उसने इशारा किया उन बातों के संदर्भ में हमें उस बुनियादी सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए जिसे हमने प्रारंभ में उठाया था। वह जवाब और कुछ नहीं, यही है कि भारतीय संस्कृति सदैव एक गतिशील वास्तविकता की परिचायक रही है। सदैव नए नए रूपों में वह सामने आती रही है और नई प्रेरणाओं से मंडित होकर भारतीय जीवन और जनमानस को नई शक्ति देती रही है। हम अभी ऊपर कह चुके हैं कि रामानंद ने राम नाम का जो बीज मंत्र अपने शिष्यों को दिया वह दो आयामों पर प्रस्फुटित हुआ। कबीर के बारे में लिखते हुए आचार्य द्विवेदी इस बात को का स्पष्ट संकेत देते हैं कि पौराणिक अवतारों को केंद्र करके सगुण उपासना के रूप में और निर्गुण परब्रह्म जो योगियों का ध्येय था उसे केंद्र करके निर्गुण प्रेम भक्ति की साधना के रूप में पहली साधना ने हिंदू जात की बाह्य आचार की शुष्कता को आंतरिक प्रेम से सींच कर रसमय बनाया और दूसरी साधना ने बाह्य आचार की शुष्कता को ही दूर करने का प्रयत्न किया। एक ने समझौते का रास्ता लिया तो दूसरे ने विद्रोह का। एक ने शास्त्र का सहारा लिया, दूसरी ने अनुभव का। एक ने श्रद्धा को पथ प्रदर्शक माना, दूसरे ने ज्ञान को। एक ने सगुण भगवान को अपनाया, दूसरी ने निर्गुण भगवान को। पर दोनों का ही मार्ग प्रेम था। सुखा ज्ञान दोनों को ही अप्रिय था, केवल वाह्याचार दोनों को ही सम्मत नहीं थे। आंतरिक प्रेम निवेदन दोनों का ही अभिष्ट था, अहेतुक भक्ति ही दोनों को ही काम्य थी। बिना शर्त भगवान के समक्ष आत्मसमर्पण दोनों को ही प्रिय थे। हजारीप्रसाद द्विवेदी, कबीर, पृष्ठ 183। समझौते का रास्ता छोड़कर विद्रोह का रास्ता अपनाते हुए निर्गुण भक्ति की जो धारा भक्ति आंदोलन की स्वतः श्रेणी से फूटी, कबीर उसकी सबसे ऊंची लहर के साथ सामने आए। समझौता उनकी प्रकृति में नहीं था, विद्रोह और क्रांति की ज्वाला उनकी रग रग में व्याप्त थी। सिर पर कफन बांधकर अपना घर फूंक कर वे अलख जगाने निकले थे। उन्हें समझौता परस्तों की नहीं, अपना घर फूंक कर साथ चलने वालों की जरूरत थी। वे लुकाठी लिए सरे बाजार गुहार लगा रहे थे। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आपना चले हमारे साथ। कबीर के अंतःकरण से फूटे इन शब्दों ने क्या परिणत पाई। मानव समता तथा एक मानव धर्म का जो सपना उन्होंने देखा और जिसे अपनी विरासत के रूप में उन्होंने युग को दिया, युग उसे साकार कर पाया या नहीं। भक्ति आंदोलन की कबीर द्वारा प्रवर्तित क्रांतिकारी तथा विद्रोही धारा आगे भी उतनी ही प्रखर तथा विद्रोही बनी रही या नहीं, फिलहाल इन बातों के विस्तार में हम नहीं जाना चाहते। संप्रत हमारा निवेदन यही है कि भारतीय संस्कृत के क्रांतिकारी चेतना के अग्रदूत बनकर कबीर अपने समय में प्रकट हुए। रामानंद से प्राप्त राम नाम के बीज मंत्र को उनकी समुचित क्रांतिकारी व्यंजनाओं के साथ अपने प्रखर तथा अनुभव सिद्ध वाणी से उन्होंने 7 द्वीपों और 9 खंडों तक गुंजा दिया, इसमें कोई भी संदेह नहीं। भक्त द्रावड़ी उप जी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। कबीर की चर्चा करते हुए प्राय उन्हें विद्रोही, कवि, क्रांतिकारी, दृष्टा, समाज सुधारक, मनीषी, रहस्यवादी, साधक और संत इस प्रकार के नाना रूपों में स्मरण किया जाता है। कोई उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के विधायक के रूप में, कोई रूढ़िभंजक के रूप में और कोई सामाजिक नेता के रूप में देखता है। किसी को उनके ये सारे रूप गौण मालूम होते हैं और वह उन्हें एक रहस्यवादी आध्यात्मिक आस्था वाले संत के रूप में ही पहचानने पर बल देता है। हमारी समझ में सवाल इन तमाम रूपों में से किसी एक या अनेक के साथ कबीर को जोड़कर देखने का नहीं है। सवाल तत्कालीन सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश के भीतर उन संदर्भों को पहचानने और उन्हें महत्व देने का है जो कबीर को एक ऐसी ऊंचाई दे सके जो शताब्दियों बाद आज भी कायम है। कबीर सचमुच विद्रोही और क्रांतिकारी थे, किंतु हमारे लिए महत्वपूर्ण यह जानना है कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के वे कौन से आयाम थे जिन्होंने कबीर के विद्रोह और उनकी क्रांति निष्ठा को उनके व्यक्तित्व की बुनियादी विशेषता के रूप में जीवित रखा। कालांतर में उन्हें किसी प्रकार की समझौता परस्ती, किसी प्रकार के लुभावने आश्रय, किसी के अहेतुक संरक्षण में नहीं आने दिया। उनके हृदय में जलती विद्रोह की इस ज्वाला को जिलाए रखा, जिसके नाते ही कबीर कबीर बने रहे और आजीवन सुविधा भोगियों, सत्ताधारियों तथा समाज और धर्म के प्रभुओं की आंख का कांटा बने रहे। कबीर को जिन जिन रूपों में भी याद किया जाता है और महत्व दिया जाता है, वे सब वह थे, किंतु कहीं वे उन सबसे बढ़कर भी थे, बेमिसाल थे, कथनी में भी और करनी में भी। जरूरत उनकी इस विशिष्टता को पहचानने और रेखांकित करने की है। समाज सुधारक, भक्त, संत, हिंदू मुस्लिम एकता के हामी और मानव प्रेम के अभिलाषी इस देश में कोई कम नहीं हुए हैं। बहुत पुराना और बहुत विशाल देश है यह। सदियों से महान मनीषी, संत, पीर, फकीर, औलिया यहाँ होते रहे हैं। भारतीय जनमानस उन्हें स्वीकार भी करता है, रहा है, पूजता और प्रतिष्ठा देता रहा है, किंतु गलत न होगा यदि कहा जाए कि कबीर इनकी परंपरा के होते हुए भी इनसे भिन्न थे। इनसे जुड़े रहने पर भी इनसे न्यारे थे। तभी तो जहां अन्य तमाम मनीषी, भक्त और संत, साधक और सिद्ध जनता के कंधों से होते हुए समाज और शासन के महाप्रभुओं के कंधों पर जा बैठे, व्यवस्था द्वारा न केवल पचा लिए गए, उसके द्वारा पूजे और सराहे गए, उसके द्वारा इस्तेमाल हुए, उसकी बोली भी बोलने लगे। कबीर एक अपवाद है कि समाज, धर्म तथा शासन के महाप्रभु, उनके कर्णधार, जिनके पास फटक तक न सके, उन्हें पचाना और अपने हित में इस्तेमाल करना तो दूर की बात। यह दूसरे संतों और मनुष्यों की अवमानना नहीं, एक वस्तुगत सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। कबीर ने जीवन भर जो कुछ प्रचारा और कहा, उसे जैसा कि हमने अभी कहा, पचाना और हजम करना तो दूर, उसे गले के नीचे उतार पाने तक का बूता समाज, शासन तथा धर्म के मसीहाओं के पास न था, न तब था और न आज है। इस प्रकार कबीर शासन तथा समाज के महाप्रभुओं की खोखली कथनी और करनी को निर्ममता के साथ उजागर कर देते हैं, उन्हें उनकी सही शक्ल में हमारे सामने पेश कर देते हैं। कबीर के सच्चे अनुयायियों की संख्या उनके अपने समय में भी उंगलियों पर गिनी जाने लायक थी और वैसा ही आज भी है। एक भीड़ कबीर पंथ के नाम से उनके मरने के बाद जरूर उनके पीछे खड़ी हो गई थी, जो आज तक चली आ रही है, किंतु उसकी वास्तविकता भी हम जानते हैं। सचमुच कबीर की शर्तों पर कबीर के साथ चलना मामूली बात नहीं है। उनका नाम लेकर पंथ खड़े करना कितनी अहमियत रखता है, इसे स्पष्ट करना जरूरी नहीं है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने साफ है। कबीर जीवन भर गुहार लगा लगा कर थक गए कि कोई माई का लाल तो उनके साथ चले, किंतु शर्त इतनी कठोर थी कि किसी का हौसला नहीं हुआ कि उसे पूरा करते हुए वह उनके साथ आए और आगे बढ़े। कबीर वर्ग वर्ण धर्म जात तथा संप्रदाय से परे सच्ची इंसानियत के मुरीद थे, उस प्रेम के पुजारी थे जहाँ बदले में कुछ पाना नहीं महज देना ही देना है, और यह देना भी मामूली नहीं, सब कुछ से नाता तोड़कर अपने आप को ही दे देना है, अपना आपा खोकर उसके साथ आना है। जाहिर है कि कबीर की गुहार पर न तो घर फूंकने वाले आगे आए और न अपना सिर कटाने वाले, उनकी आवाज बस वातावरण में गूंजती रही। कबीड़ा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है, घर जोड़ने की माया। सो जिस समाज में घर जोड़ने की माया की धूम मची हो, आपस की होड़ा होड़ी हो, वहाँ घर फूंक कर कबीर की तरह सरे बाजार खड़े होने का साहस कितनों में होता। कबीर की पुकार अनसुनी ही रह गई। दूसरे जहाँ अपने आप को अहंकार और दम्भ को छोड़ना तो दूर, उसे दूसरों पर जबरन थोपते हुए सुख और संतोष पाने वालों का मजमा हो, वहाँ सच्चे प्रेम की राह अगर सुनी रह जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। कबीर कहते रहे, कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाय, शीश उतारे भूई धरे सो घर बैठे आए। जाहिर है कि यहाँ भी कबीर की आवाज अनसुनी रही। सचमुच बड़ा कठिन और दुर्लभ होता है वह प्रेम जिसका सपना उन्होंने देखा था और अपना सब कुछ देकर जिसे उन्होंने हासिल किया था। बड़ी अलभ्य थी वह इंसानियत जिसकी बेल इस धरती पर वे रोपना चाहते थे। कबीर की विद्रोही वाणी इसीलिए आजीवन गूंजती रही, अकेली गूंजती रही, और कितनी बड़ी आस्था थी उनकी कि उन्होंने असफलता के बावजूद समझौते की गलियों में भटक कर उसे गुमराह नहीं होने दिया। वे अपनी जमीन से कण भर भी अपने सपनों और संकल्पों के मूल्य पर नहीं हटे। मनुष्य को, समाज को तथा जीवन को जिस रूप में वे ढालना चाहते थे, जिस नए मनुष्य, नए समाज तथा नए जीवन की परिकल्पना उन्होंने की थी, उनके अपने समय की समस्त रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी शक्तियां उनके खिलाफ एकजुट थी। एक दुर्धर्ष और अपराजय योद्धा की तरह वे आजीवन इन शक्तियों से जूझते रहे और उन्होंने उनके समक्ष घुटने नहीं टेके, उनसे हार नहीं मानी। उनकी वाणी उल्टे प्रखर से प्रखरतर होती गई, उसे चुप कर पाना तो दूर, उसे कोई मध्यम भी नहीं कर पाया। हर समझौते को उन्होंने लानत दी, हर प्रलोभन को उन्होंने ठुकराया, हर खतरे का उन्होंने सामना किया, किंतु उस मशाल को ऊंचे हाथों थामे रहे जिसकी रोशनी में ही एक नए इंसान, एक नई जिंदगी तथा एक नए संस्कृत तक पहुंचाने वाली राह मिल सकती थी। आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी ने यह बहुत ठीक लिखा है कि कबीर कदापि समन्वयवादी नहीं थे। किसी प्रकार की भी दीन इलाही जैसी पैरोकारी उन्होंने नहीं की। हिंदू तथा इस्लामी धर्म मत के श्रेष्ठांशों को चुनकर उनकी अपनी संस्कृतियों के सार तत्व को गूंथ कर समन्वय का एक गोरख धंधा प्रस्तुत करने का प्रयास उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने हिंदू तथा इस्लामी धर्म मत दोनों को ठुकराया, उनके शास्त्रों ग्रंथों को तरजीह नहीं दी, उनके पंडितों और मुल्लाओं को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने इन सब पर हमला किया, इन सब की धज्जियां उड़ाई। उनका रास्ता इन सब से अलग था और अपने मार्ग पर उनकी सत्यता पर उनका अगाध विश्वास था, अपने लक्ष्य की सच्चाई पर उनकी अप्रतिहत आस्था भी आस्था थी। तभी चली आ रही सारी लीकों को रौंदते हुए वे अपनी लीक अलग बनाकर चले। शायर सिंह और सपूत का उदाहरण सामने रखा, यदि अपने स्वानुभवों पर, अपने ही रास्ते की सच्चाई पर उनका इतना अखंड विश्वास न होता तो अनपढ़ होते हुए भी पंडितों की गढ़काशी में उनके पोथी ज्ञान को कठोर चुनौती देते हुए उन्हें इस प्रकार नहीं ललकारते, मैं काशी का एक जुलाहा बूझूं मोरगियाना, या उन्हें चुनौती देते हुए ऐसा नहीं कहते, पंडितवाद बदनते झूठा। वस्तुतः कबीर सरापा विद्रोह की जीवंत मूर्ति थे। राम नाम के बीज मंत्र को उन्होंने इस प्रकार जी लिया था कि वे निर्भय हो गए थे। उन्हें न कट्टरपंथी हिंदुओं से भय था न मुल्लाओं से। अपने राम की भांति वे भी न हिंदू न मुसलमान थे और इस बात को उन्होंने अपने समय में साहस के साथ घोषित किया था। उन्होंने हिंदुओं की हिंदुआई और तुर्कों की तुर्काई अच्छी तरह देख ली थी। वे जान चुके थे कि दोनों ही अंधे हैं और जो कुछ खुद अंधे हों वे दूसरों को रास्ता क्या दिखाएंगे। अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदुओं की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। ऐसी स्थिति पर वे महज इन पर हंस ही सकते थे, उनकी मखौल उड़ा सकते थे, उनके विचारों और वाहयाचारों की धज्जियां बना सकते थे और उन्होंने उनकी धज्जियां बनाई भी। बिना उनके तत्ववाद की परवाह किए उन्होंने उस सारे कर्मकांड पर, उन सारे आचार विचारों पर कड़ी चोट की जो साधारण जन को अपमानित करते थे। आदमी और आदमी में फर्क करके देखते थे, आदमीयत से बढ़कर सतही विधि विधानों को खोखली, पूजाचर्या को सड़े गले, रीति रिवाजों को मानते थे। जोगी हो अथवा अवधूत पंडित हो अथवा मुल्ला शेख हो अथवा ब्राह्मण, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। तिलमिला देने वाले सवालों की झड़ी लगाते हुए उन्हें निरुत्तर किया। सैकड़ों की तादाद में उनकी ऐसी शाखियां तथा पद हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि प्रतिपक्षियों पर आक्रमण करते समय कबीर कितने निर्मम हो उठते थे। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे ब्रह्म छाड़ी पूजन लागे पथरा। कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ौले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गई ले बकरा। जंगल जाए जोगी धुनिया रमौले, काम जराए जोगी होई गई ले ही जरा। मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगौले, गीता बाँच के होई गई ले लबरा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवाजवा बंधल जैबे पकड़ा। और मुसलमानों के बाह्याचार पर कबीर की फटकार है। काजी कौन कतेब बखाने, पढ़त पढ़त केते दिन बीते, गति एक नहीं जाने। सकति से नेक पकड़ी कह सुनत, यह न बूंद रे भाई। और खुदाई तुरक मोहि करता, तो आपे कठिकिन जाई। हाँ तो तुरक किया कर सुन्नति, औरत सो का कहिए। अधर शरीरा नारी न छूटे, आधा हिंदू रहिए। छाणी कतेब राम कही काजी, खून करत हो भारी। पकड़ी टेक कबीर भगत की, काजी रहे जखमारी। ये मात्र एक एक उदाहरण है जहाँ कबीर हिंदू मुसलमानों के कर्मकांड तथा बाह्याचारों पर निर्मम हुए हैं। गो की निर्ममता कबीर के स्वभाव में न थी, अहंकार उनकी प्रकृति में न था। वे अहंकार से सर्वथा रहित तथा प्रकृति से नितांत कोमल और विनीत थे। वे तो अपने राम के मुतिया थे जो जेवरी में उन्हें बांधे जिधर चाहे घुमाता था। जब वे अपना शीश काटकर पहले ही राम की देहरी में अर्पित कर चुके थे तब अहंकार रहता भी तो कहां। कबीर के इस रूप को पहचान लेने पर ही उनके विद्रोही और क्रांतिकारी रूप की, उनके आक्रामक और समझौता विहीन रूप की सही पहचान हो सकती है।